शारदा जी सोकर उठती है तो वो इस वक्त अपने कमरे में थी। उनकी नज़र कैलेंडर पर जाती है तो उनकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो धीरे से कबर्ड के पास जाती है और अभय की तस्वीर बाहर निकालती है। वो अभय की तस्वीर पर हाथ फेरते हुए कहती है, अभय आज तुम्हारी पुण्यतिथि है, हर साल आज के दिन मैं मंदिर जाती हूँ तुम्हारी आत्मा की शांति के लिए। मुझे आज ही के दिन तुम्हारी मौत की खबर मिली थी, इसीलिए मैंने आज के दिन को ही तुम्हारी पुण्यतिथि के रूप में चुन लिया था, जिस दिन तुम मेरी जिंदगी से गए थे। मुझे ये तो नहीं पता कि तुम्हारी मौत कब हुई थी, पर जिस दिन मैंने तुम्हारी बॉडी को देखा था, मेरे लिए तो वही दिन ऐसा था जिस दिन मैं भी मर जाना चाहती थी। तुम फिक्र मत करो, अब मैं तुम्हारे कातिल को सजा जरूर दूंगी। और वो औरत जो मुझे सीमा की तरह दिख रही थी, नहीं वो औरत नहीं थी, वो सीमा भी नहीं थी, वो कोई और ही थी, वो मेरी आंखों का धोखा था। वो सीमा कैसे हो सकती है, सीमा तो मर चुकी है ना। अब है ये क्या हो रहा है, मुझे पता करना होगा वो औरत कौन है जो मुझे सीमा की तरह दिख रही थी। वो सीमा नहीं हो सकती है, क्योंकि सीमा को तो हम दोनों ने अपने हाथों से मारा था, तो फिर उस औरत का यूं अचानक से सीमा के जैसा दिखना जरूर कोई और बात है। मुझे पता करना होगा, मुझे ये बात पता करनी ही होगी, मैं उसे ऐसे नहीं जाने दे सकती हूँ। शारदा जी अपने घर से निकलती है और दोबारा से उसी जगह पर पहुंच जाती है जहां पर उसने सीमा को देखा था। वो खाली सड़क पर इधर से उधर देखे जा रही थी, पर उसे दोबारा सीमा कहीं नजर नहीं आती है। वो उस पेड़ के पास भी जाती है जहां पर उसने सीमा की परछाई देखी थी। उसने वहां पर जाकर आसपास अच्छी तरह से ढूंढा, लेकिन उसे कुछ भी नजर नहीं आया। तभी उसे दूर एक औरत खड़ी दिखाई देती है। शारदा जी उसके पास जाती है और पीछे से उसके बालों को पकड़ते हुए कहती है, तू फिर से आ गई, लेकिन इस बार मैं तुझे ऐसी मौत दूंगी कि तू दोबारा मेरे सामने आने की हिम्मत नहीं करेगी। तभी वो औरत अपने बालों को शारदा जी के पंजे से छुड़ाती है और उसे गुस्से में घूर कर देखती है। शारदा जी देखते हैं ये सीमा नहीं है, ये तो यूं ही कोई दूसरी औरत है जो सड़क पर जा रही थी। उस औरत ने शारदा जी के गाल पर एक थप्पड़ मारा और उसे सड़क पर गिराते हुए कहा, पागल हो गई है क्या, चली जा यहां से वरना मार मार के सारा भूत उतार दूंगी। शारदा जी खड़ी होती है और अपने कपड़ों से धूल झाड़ते हुए फिर से उसी जगह पर आती है और आसपास देखने लगती है। वो आसपास देखते हुए अपने मन में कहती है, तू जहां कहीं भी है मैं तुझे ढूंढ निकालूंगी और उसके बाद तुझे फिर से मार दूंगी। ऐसा कहते हुए वो जोर जोर से हंसने लगती है, बिल्कुल किसी पागल की तरह। आते जाते लोग सीमा जी को हीन भावना से देख रहे थे। वही अरुणिमा और कीर्ति कॉलेज पहुंचती है। कीर्ति कॉलेज में पहुंचने के साथ ही अपनी क्लास में चली गई थी और अरुणिमा अपनी क्लास की तरफ पढ़ रही थी तो बॉडीगार्ड उसके साथ थे। सारा कॉलेज अरुणिमा को देखकर उससे दूर हो जाता है, क्योंकि सब जानते हैं कि वो राजा साहब की पत्नी है और अब उनके लिए उनकी रानी साहिबा है। अरुणिमा को पता था कि ये सारे लोग उससे दूर क्यों जा रहे हैं, क्योंकि इन सबके दिलो दिमाग पर आस्तिक का डर है। डर या इज्जत या रिस्पेक्ट या फिर सच में डर है, पता नहीं। पर अगर इनमें से कोई भी अरुणिमा से बात करने की कोशिश करता है तो वो अगले दिन से कॉलेज नहीं आता है। ये बात अरुणिमा ने जान ली थी, इसलिए वो खुद भी किसी स्टूडेंट से बात नहीं करती थी। अरुणिमा ने सोच लिया था, उसकी माँ उसे वापस अपना नहीं रही है और आस्तिक के साथ वो अपनी पूरी जिंदगी इस तरीके से नहीं बिता सकती है, इसीलिए उसे अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करना है। एक बार अरुणिमा को अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री मिल जाएगी तो अरुणिमा यहाँ से भाग जाएगी। अरुणिमा ने ये बात तय कर ली थी कि एक बार ग्रेजुएट होने के बाद वो यहाँ से कहीं दूर भाग जाएगी। इतनी बड़ी दुनिया है, कहीं भी अकेले रह लेगी। उसके पास काबिलियत है और वो पढ़ी लिखी है, अपने लिए तो वो एक छोटी मोटी नौकरी ढूंढ ही सकती है। इसीलिए जब तक उसके फाइनल एग्जाम नहीं हो जाते और उसको ग्रेजुएशन की डिग्री नहीं मिल जाती, उसे आस्तिक को और उसके टॉर्चर को दोनों को बर्दाश्त करना था। हाँ, कुछ लोग थे जिससे दूर जाने का सोचकर अरुणिमा को दुख जरूर होता, जैसे कि जानवी, कीर्ति और उसकी बहन मिश्री। लेकिन वो कहते हैं ना, कुछ पाने के लिए कुछ खोना होता है, और अरुणिमा को अगर अपनी आज़ादी चाहिए तो उसे अपनों को भूलना होगा और उनसे दूर जाना होगा। अरुणिमा को ये करने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए, पर शायद वो हिम्मत अरुणिमा में तभी आ गई थी जब आस्तिक ने उसे सिर्फ मर्दाना जरूरत ही समझ लिया था। रॉयल ऑफिस, आस्तिक अपने कमरे में बैठा हुआ था। उसके सामने उसका असिस्टेंट कुणाल बैठा हुआ था। कुणाल आस्तिक के सामने एक पेपर करते हुए कहता है, राजा साहब ये जमीन हमारी कंपनी के नाम हो चुकी है, अब हम चाहें तो यहाँ पर कोई भी फैक्ट्री ओपन कर सकते हैं। वैसे इस समय मार्केट में टेक्सटाइल बिजनेस काफी ज्यादा चलन में है, तो मेरे ख्याल से हमें भी यहाँ पर एक टेक्सटाइल बिजनेस ओपन करना चाहिए, हमारी अपनी टेक्सटाइल कंपनी होगी। पर आस्तिक उस जमीन की फोटो को अपने हाथ में लेता है और अपनी निगाहों से उसे घूरते हुए नामे सर हिलाते हुए कहता है, नहीं यहाँ पर कोई टेक्सटाइल कंपनी ओपन नहीं होगी, बल्कि यहाँ पर एक कॉस्मेटिक कंपनी ओपन होगी। कुणाल हैरानी से कहता है, राजा साहब, कॉस्मेटिक कंपनी, मतलब अगर फैसला कर ही लिया है तो कुछ समझ कर ही किया होगा, लेकिन क्या मैं ये पूछ सकता हूँ कि आपको कॉस्मेटिक में क्या दिलचस्पी आ गई है? वो तो हमारा जोन भी नहीं है। अचानक से आस्तिक की आंखों के सामने उसका बचपन आ जाता है। वो एक छोटे से घर में सीढ़ियों से चढ़ता हुआ ऊपर वाले कमरे में आता है। वो देखता है ऊपर वाले कमरे में उसकी माँ आईने के सामने बैठी हुई है। उसकी माँ को मेकअप करना नहीं आता है, लेकिन फिर भी उल्टे सीधे मेकअप को अपने चेहरे पर लगाकर खुद को सुंदर बनाने की कोशिश कर रही है। उसकी माँ एक लिपस्टिक उठाती है और उसे अपने होठों पर रगड़ने लगती है। आस्तिक गुस्से में आता है और लिपस्टिक को छीनकर दूर फेंक देता है और कहता है, बस करो माँ, तुम्हें उस आदमी के लिए सजने की जरूरत नहीं है, वो कभी वापस नहीं आएगा।